लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम संत अल्फोंसा की जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत की कलीसिया एक धनी कलीसिया है जिसने कई महान संतों को जन्म दिया है। उन संतों ने भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है और अपने सुंदर जीवन से न केवल भारत किंतु विश्वव्यापी कलीसिया को भी प्रेरित किया है। हम उनका शत शत नमन करते हैं। अन्ना कोटी ने अपने चाचा का समर्थन पाकर फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म समाज में प्रवेश किया। 2 अगस्त 1928 को उसने पोस्टुलेंसी शुरू की तथा उस दिन के संत अल्फोंसो लिगोरी के नाम पर सिस्टर अल्फोंसा कहलाई। पोस्टुलेंसी के दौरान सिस्टर अल्फोंसा को मुलाकात हेतु घर जाने की अनुमति थी। उधर उनकी चाची के मन से शादी की बात अभी तक नहीं निकल पाई थी। जब अल्फोंसा पोस्टुलेंसी की अवधि में पहली बार घर आई तब उनकी चाची ने विवाह के लिए सोनार को श्रृंगार बनाने का आदेश दिया। उसने फिर एक बार शादी के लिए जोर लगाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि वह लड़के वालों से वादा कर चुकी है और व्यवहारिक रूप से उस वादा को वापस लेना असंभव है। तब उनके चाचा जो अल्फोंसा के शादी नहीं करने और धर्म सामाजिक जीवन जीने के विचार को अच्छी तरह समझते थे, अपनी पत्नी की बातों पर हस्तक्षेप किया तथा उसे शादी के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं डालने को कहा। इस तरह अल्फोंसा के लिए अपनी चाची को मनाना धर्म सामाजिक जीवन हेतु प्रशिक्षण से कहीं अधिक कठिन था। पोस्टुलेंसी की अवधि समाप्त करने पर सिस्टर अल्फोंसा ने ब्राउन वस्त्र धारण किया। जलने की घटना के बाद से ही वह कई प्रकार की बीमारियों की शिकार हो गई थी। उसे लगातार दर्द होता था, फिर भी 1932 में उन्होंने वाज पहले के मलयालम उच्च विद्यालय में अध्यापक का काम शुरू किया। वे विद्यार्थियों के प्रति बड़े स्नेह एवं सहानुभूति का भाव रखती थी। जब सिस्टर अल्फोंसा अधिक बीमार हो गई, तब उनके विद्यार्थी उनसे मिलने आते थे और लगातार उनका ख्याल रखते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे उनकी मदद भी करते थे। वे सिस्टर अल्फोंसा से सलाह और प्रार्थना की मांग करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग उनके पास सलाह लेने आते थे, उन्होंने उनकी सलाह को गहरा और उनके माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का जवाब भी शीघ्र प्राप्त करना महसूस किया। किंतु लगातार बीमार पड़ने के कारण उन्हें शिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया। उनकी बीमारी के कारण उन्हें नोविशेट में निर्धारित अवधि से अधिक दिनों तक रखा गया। काफी कठिनाइयों एवं संघर्ष के बाद 12 अगस्त 1936 को सिरो मालाबार रीति की क्लारिस्ट धर्म बहनों के धर्म समाज में उनका अंतिम मन्नत हुआ। जब वे लगातार बीमार होती रहीं, तब उन्होंने स्वीकार किया कि वे ख्रिस्त के साथ सहर्ष दुख सहने के लिए बुलाई गई हैं। अपनी एक आत्मकथा में उन्होंने कहा है कि मेरी पीड़ा जैसा भी हो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी और यदि मुझे अपमान सहना पड़े तो मैं अपना आश्रय यीशु के पौत्र हृदय में खोजूंगी। कहा जाता है कि अल्फोंसा को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला था। यीशु के छोटी संत तेरेसा के दिव्य दर्शन में अल्फोंसा को बतलाया गया था कि वह संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं होगी बल्कि दूसरे तरह से जीवन भर दुख उठाएगी। संत अल्फोंसा के बारे एक कहानी है कि उन्होंने ईश्वर से एक धर्माध्यक्ष एवं एक धर्म बहन से मलेरिया को हटाने और उस पीड़ा को अपने ऊपर डालने की मांग की थी। ईश्वर ने उनकी यह प्रार्थना सुन ली और उनके बदले वे स्वयं बीमार पड़ी। समय के साथ उनके दर्द और पीड़ा बढ़ती गई। अपने पीड़ा के बीच वह लगातार एक प्रार्थना करती थी। यीशु, मरियम और यूसुफ, उन्होंने एक प्रार्थना भी बनाया जो इस प्रकार है। हे यीशु, मुझे अपने हृदय के पौत्र घाव में छिपा ले। मुझे प्यार करने और सम्मान पाने की लालसा से मुक्त कर। प्रेम एवं यश के पीछे भागने से बचा। मुझे इतना विनम्र बना दे ताकि मैं बिल्कुल गौण हो जाऊं। प्रेम की आग की एक नन्ही किरण बन जाऊं जो आपके पौत्र हृदय को प्रज्वलित करे। मुझे कृपा दे कि मैं अपने आप को एवं दूसरे सभी जीवों को पूरी तरह भूल सकूं। कुछ दिनों के बाद 28 जुलाई 1946 को 36 साल की उम्र में उन्होंने अपनी चेतना खो दी और अंततः मौत को गले लगा लिया। कहा जाता है कि दफन क्रिया के दौरान एक धर्म बहन जो पीठ दर्द से बहुत अधिक परेशान थी, वह उनकी मध्यस्थता द्वारा पीठ दर्द से चंगी हो गई और कॉन्वेंट से बारिश लेते समय उनके शव को ढोया। मृत्यु के बाद सिस्टर अल्फोंसा के कई पूर्व छात्र एवं अन्य लोगों ने उनके कब्र का दर्शन किया और उनकी मध्यस्थता से प्रार्थनाएं की। उनमें से कई लोगों ने बतलाया कि अल्फोंसा की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने पर उनकी मांगे पूरी हुई। इस तरह उनकी मध्यस्थता की शक्ति की खबर चारों ओर फैलने लगी और लोग अधिक संख्या में उनके पास प्रार्थना करने आने लगे। यद्यपि कलीसिया की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई थी, तथापि देश भर से लोग उनकी कब्र पर प्रार्थना करने आने लगे और कई लोगों को चंगाई भी मिली। इस तरह उनका कब्रस्थान एक तीर्थस्थान बन गया। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 8 फरवरी 1986 में उन्हें धन्य घोषित किया तथा 12 अक्टूबर 2008 को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उन्हें संत घोषित किया। आज उनकी कब्र एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल बन गया है। उनके अवशेष को पलाई धर्म प्रांत के संत मेरी फोरान कैथोलिक गिरजाघर में स्थापित किया गया है। आइए हम भारत के महान संत अल्फोंसा की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि वे हमारे सभी दुख कष्टों को धीरज पूर्वक सहने हेतु सहायता प्रदान करें। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत अल्फोंसा के जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत, उसके बाद चेतना जागरण।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक हिम्मत। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, आज का युग परिवर्तन का युग है। भारतीय नारी की दशा में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखा गया है। अनेक समाज सुधारकों, समाज सेवियों और हमारी सरकारों ने नारी उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है तथा समाज व राष्ट्र के सभी वर्गों में इसकी महत्ता को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। आज नारी को खुद अनुभव करना है कि वह अबला नहीं सबला है, वह किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं है, उन्हें बस जागरूक और स्वावलंबित होने की जरूरत है, खुद में आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है। नारी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, पर उन्हें अपने घर पर या काम के क्षेत्र में अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आगे आना होगा। अगर वह थोड़ा हिम्मत और दिमाग का सही प्रयोग करे तो वह खुद भी सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकती है। आशा है प्रस्तुत नाटिका महिलाओं में आत्मविश्वास जगा सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस का लिखा नाटक हिम्मत।
आज तो बड़े मूड में दिखाई दे रही हो, क्या बात है?
नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं।
चलो, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। वैसे अगर कहीं चलने का मूड बनाना हो तो क्या ख्याल है?
जब चलना ही है तो चलो, उसमें मूड क्या बनाना, कहाँ चलना है?
एक मेला लगा है शहर में, आनंद मेला, तो शाम को जरा देख आते हैं कि उसमें मजा आता भी है या नहीं।
और अगर आनंद मेले में भी आनंद नहीं आया तो आपके पैसे पानी में।
और अगर आनंद मेले में आनंद ही आनंद आया तो?
फिर तो पैसे आनंद में, ठीक है?
तो फिर शाम को तैयार रहना तुम। अच्छा हाँ, पहले मेले में चलें या खाना खाने?
आप कहाँ ये सब फालतू खर्च बढ़ा रहे हैं।
तुम भी ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं पता ही नहीं किसके साथ मेला घूमने जा रहा हूँ। अरे, अपनी बीवी के साथ ही तो जा रहा हूँ।
मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा मतलब, हम फालतू खर्च करेंगे तो हमारे ही पैसे जाएंगे, और बचत करेंगे तो हमारे ही पास रहेंगे।
हाँ, फिर बुढ़ापे में खूब सैर सपाटा करेंगे।
बुढ़ापे में सैर सपाटा क्यों करेंगे हम?
क्योंकि अभी तुम खर्च नहीं करने दे रही हो।
आप भी ना।
तो ठीक है, शाम का खाना हम भारी खाएंगे, तुम बस तैयार रहना।
ठीक है, और कुछ?
अब और क्या रह गया है?
ठीक है, मैं तैयार रहूंगी।
चलूं, ऑफिस का टाइम हो रहा है।
कौन? आती हूँ। तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की?
तुम गजब करती हो। अरे, हम जैसों को कहीं जाने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है क्या?
ओफो, अच्छा जल्दी से बताओ यहाँ क्यों आए हो, और फूटो यहाँ से।
अरे, इतने समय बाद मिले हैं, कुछ मेरी सुनो और कुछ अपनी सुनाओ।
मेरे पास बकवास के लिए फालतू टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ तुम्हें क्या काम है।
शायद तुम ये सोचकर डर रही हो कि कहीं तुम्हारा पति ना आ जाए, है ना? घबराओ मत, उसके आने से पहले चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। हाँ, आइंदा तुम मेरी बात मानो तो मैं खुद तुम्हारे पति से मिलूंगा, नहीं मानोगी तो।
आखिर तुम चाहते क्या हो?
सुनो, मेरे पास तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ मैसेज एक सीडी में पड़े हैं, दोपहर 2 बजे उसी पार्क में आकर ले जाना। नहीं तो?
नहीं नहीं, मैं आकर के जाऊंगी, अब तुम जाओ।
ठीक है, भूलना मत,
अब इस राक्षस से तू ही बचाना। आ गए आप?
हाँ साक्षी, मैं जीजा जी से मिलने जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम है, अभी बस से निकल रहा हूँ मैं। तुम कल अपनी माँ के यहाँ चले जाना और 5-6 बजे तक लौट आऊंगा शाम तक, ठीक है?
ठीक है, एकदम अर्जेंट क्या काम आ पड़ा है?
अब तो जाकर ही पता चलेगा ना।
कुछ बना देती हूँ, खाकर चले जाना।
जो भी करना है जल्दी करना।
अभी करती हूँ। चलो, अब मैं अपने घर की तरफ तो आ गई हूँ। अरे, यह अजीत बदमाश का घर है, देखती हूँ वह है या नहीं।
अरे साक्षी, तुम मेरे घर क्यों आई हो?
जैसे उस दिन तुम मेरे घर आए थे।
अभी तो जाओ, मैंने 2 बजे उसी पार्क में मिलने को कहा है।
अरे, जैसे उस दिन तुम आए थे मेरे घर, पार्क में क्या मिलना है?
अरे मगर अभी तो सब हैं घर पर।
तुम्हारी बीवी भी होगी तो चलो उससे भी मिल लेती हूँ।
तुम मरवाओगी मुझे, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, अभी तो तुम जाओ यहाँ से।
अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो तुम ही एक काम करो, मेरे वो फोटोग्राफ्स और मैसेज की सीडी मुझे दे दो।
अरे मैंने कहा ना कि मुझे 2 बजे पार्क में मिल रहा हूँ, वहाँ दे दूंगा तुम्हें।
मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि यहाँ तक आकर भी खाली हाथ निकल जाऊंगी। अब जल्दी लाते हो या बुलाऊं तुम्हारी बीवी को?
अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, अगर वो नीचे आ जाएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा?
और अगर उस दिन मेरे पति घर आ जाते तो मैं उन्हें क्या जवाब देती? अब जाओ और जल्दी करो, अगर तुम घर में घुसने के बाद बाहर नहीं आए तो मैं फिर तुम्हारी बीवी से मिलकर ही जाऊंगी।
आज तो फंस गया मैं, लाता हूँ।
कभी कभी हम जैसों का दाव भी लग ही जाता है।
लो ये लिफाफा और फूटो यहाँ से।
बेशर्म तो मैं भी नहीं हूँ, काम होने के बाद मूर्खी कोई रुकता होगा, लेकिन हाँ उसमें एक भी फोटो या कुछ कम हुआ तो मैं यहीं आ जाऊंगी, और अब आऊंगी तो मेरे साथ में पुलिस भी होगी।
अरे अब तुम बस जाओ यहाँ से।
आओ सुमेरा आओ, कैसी हो तुम?
मैं तो अच्छी हूँ, भाई ने तुमको बस से उतरते देखा था तो उसने मुझे बताया कि तू आई है।
हाँ यार, वो कल अपनी जीजा के पास किसी काम से गए हैं तो मैंने सोचा अपने घर जाकर एक बार मिलाती हूँ।
यह तो अच्छा किया तूने, क्या हाल है, जीजा जी कैसे हैं?
बढ़िया है, घर पर सब कैसे हैं?
सब अच्छे हैं।
तुझे मालूम है कल मेरे घर कौन आया था?
कौन आया था?
अजीत बदमाश।
तेरा एक्स बॉयफ्रेंड?
हाँ, कल मेरे घर आ गया यार, और बेशर्मों की तरह आज पार्क में बुलाया था, मेरे पुराने फोटोग्राफ्स लेकर मुझे धमका रहा था।
अच्छा, फिर?
मैंने हाँ करके उसे जैसे तैसे तो भेज दिया था, फिर पता है आज क्या किया है मैंने?
क्या किया?
मेरे घर के रास्ते में ही उसका घर पड़ता है तो पहुंच गई मैं उसके घर।
अच्छा, फिर तो सीन बन गया होगा।
मुझे देखकर चौंक गया, जाने की मिन्नतें करने लगा। मैंने उसको फोटोज वगैरह लाने के लिए कहा, नहीं तो उसकी बीवी को बुला के उसे सब कुछ बता दूंगी।
फिर
क्या, लेकर आया सब, और मैंने कह दिया अगर अब वह मेरे घर आया या मेरे फोटोज कम हुई तो मैं पुलिस के साथ आऊंगी।
वाह यार, तेरी हिम्मत हम सबके लिए एक अच्छा उदाहरण है, तूने हमको एक नई राह दिखाई है।
ये ब्लैक मेलर्स भी उसी को डराते हैं जो उनसे डरते हैं, ऐसों का सामना कर उनको सबक सिखाना चाहिए।
बिल्कुल, सब लड़कियों को डर जाने की बजाय हिम्मत से काम लेनी चाहिए।
हिम्मत, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे माइकल होजेस, नम्रता तिवारी, दिव्या शूलिया और निर्विकार मूल्ले। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।